तारीख 26 जनवरी दिन रविवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दाश। आज मुलाकात बीबीसी हिंदी रेडियो के कुछ जाने माने चेहरों से।
मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव।
नमस्कार, मेरा नाम विष्णु शंकर है।
नमस्कार, मैं हूँ रेनू अगाल।
और मैं हूँ रेहान फतल।
और मैं हूँ मोहनलाल शर्मा।
बीबीसी में काम करने के उनके अनुभव क्या रहे, जानेंगे उन्हीं की जुबानी।
बीबीसी का इतना बड़ा नाम था उस वक्त कि आपको पता चला लाल किले पे हमला हो रहा है और आतंकवादी बीबीसी के ऑफिस में फोन कर रहा है और कह रहा है कि हमारे जंगजू लड़ रहे हैं।
आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने फोन मिलाया और थोड़ी देर में अटल बिहारी वाजपेयी लाइन पर थे।
पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। भारत में आज 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो मुख्य अतिथि थे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। 90 मिनट की परेड में भारत की सैन्य क्षमता के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बेहतरी की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। चीन में स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना वायरस पहले से कहीं अधिक तेजी से फैल रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक ने कहा है कि तेजी से संक्रमित होने वाले इस वायरस को रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। राजधानी बीजिंग में छात्रों की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक लगभग 2000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस वायरस के कारण 55 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चीन के हेल्थ कमीशन की डिप्टी निदेशक ली बिन का कहना है कि इस बीमारी के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। ये एक नए तरह का वायरस है और इसके बारे में हमारी जानकारी बेहद सीमित है। हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी कैसे हुई। हमें ये पता है कि हालात महामारी का रूप ले रहे हैं और पूरी तरह से काबू में नहीं है। ये थे चीन के हेल्थ कमीशन के डिप्टी निदेशक ली बिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की में पूर्वी इलाके में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद अब भी वहां इमारतों के मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच राहत और बचाव कर्मी लगातार दूसरी रात मलबे में जीवित लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप के कारण अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राहतकर्मी मलबे से 40 लोगों को निकाल चुके हैं। भूकंप के केंद्र एलाजिक शहर में राहत बचाव कार्य से जुड़े एल्पर टूना कहते हैं,
वी हैव अबाउट 100 सर्च एंड रेस्क्यू पर्सनल वर्किंग ऑन साइट। देयर आर सेवरल
यहां करीब 100 राहत और बचाव कर्मी काम पर लगे हैं। यहाँ भूकंप के कारण गिरी इमारतों का मलबा है और हम इन्हीं के बीच लोगों को तलाश रहे हैं। शहर के बाहर गांव में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, लेकिन वहाँ हताहतों की संख्या थोड़ी कम है। ज्यादा नुकसान शहरी इलाकों में हुआ है जहाँ लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं। ये थे राहत और बचाव कर्मी एल्पर टूना के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनन में बेरूत में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी एक दीवार बना रहे हैं। इस दीवार के कारण बेरूत के बाहरी इलाके राजधानी के मुख्य इलाकों से कट जाएंगे। इससे एक दिन पहले यहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई थीं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों के भीतर घुसने की कोशिश की। लेबनन में बीते कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलाई हैं। इसमें कम से कम 22 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इसके साथ ही घायल प्रदर्शनकारियों की संख्या अब करीब 1000 तक पहुंच गई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राजधानी के तहरीर स्क्वायर में छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आज इराक में शिया धर्मगुरु ने भी अपने समर्थकों से अमरीका विरोधी प्रदर्शन की अपील की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर भी लाइव सुन रहे हैं। 31 जनवरी तक कार्यक्रम दिनभर का सीधा प्रसारण अब बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर सुना जा सकेगा। जैसा कि हम आपको लगातार सूचित कर रहे हैं, 31 जनवरी को बीबीसी हिंदी रेडियो के दिन भर कार्यक्रम का आखिरी प्रसारण होने वाला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बीबीसी हिंदी सेवा बंद नहीं हो रही है, बल्कि केवल शॉर्टवेव माध्यम से होने वाला प्रसारण यानी रेडियो कार्यक्रम बंद होने वाला है। आज दिन भर में बीबीसी के पुराने जाने माने प्रस्तोता संजीव श्रीवास्तव, रेणु अगाल, विष्णु शंकर, रेहान फजल और मोहन लाल शर्मा बीबीसी रेडियो में काम करने के अपने अनुभवों और कुछ कहानियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं।
दरअसल ये बातें उन लोगों की हैं जिनसे हमारी जिंदगी की डोर किसी न किसी मोड़ पर उलझती है, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते अपने से दूर जाते हुए। उन्हीं की यादों के हस्ताक्षर लेकर हाजिर हैं हम बीबीसी के इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं स्टूडियो में जिन लोगों के साथ हूं, उनकी आवाज और अंदाज बयां ही कुछ और है, उनकी छाप ही कुछ और है। मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं,
मैं हूं संजीव श्रीवास्तव।
नमस्कार, मेरा नाम विष्णु शंकर है।
नमस्कार, मैं हूं रेणु अगाल।
और मैं हूं रेहान फतल।
और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत संजीव आपसे ही करते हैं। बीबीसी एक बड़ा नाम जिसमें आपने इतने सालों तक काम किया, वो कौन सी यादें हैं जो आज तक आपको जोड़े रखती हैं?
भाई, यादें तो मोहनलाल इतनी है कि जो आपका कार्यक्रम का समय है ना, वो खत्म हो जाए फिर भी हम रुके नहीं। जब मैंने बीबीसी ज्वाइन किया, मतलब स्ट्रिंगर में 91 से स्ट्रिंगर था उसका, और 94 में आधिकारिक रूप से फुल टाइम ज्वाइन किया, तो दो ही भारतीय पत्रकारिता में ऐसे नाम थे जिनकी चर्चा होती थी। अरे भाई क्यों, कोई स्मार्ट बनता था ना जर्नलिस्ट, कहते थे अच्छा बड़ा रुनछोरी समझता है अपने आप को, या अच्छा मार्क टली बनना चाहते हो। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस से आया था, शोरी साहब एडिटर थे और मार्क टली साहब की बीबीसी में उस समय, तो बड़ा एक ऐसा लगा कि बड़े साहब कुछ हासिल कर लिया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई, मज़ा आया। बहुत ईमानदारी के साथ, हमेशा कहता हूँ बीबीसी से ज़्यादा ईमानदारी के साथ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने साथी पत्रकारों को जो उसमें काम कर रहे हैं उनको जिस तरह की आज़ादी देती है। लोग कहते हैं जी ये इसके पक्ष में उसके पक्ष में, बट जो एक विचारों की स्वतंत्रता बीबीसी ने दी उसकी वजह से आप कहीं और काम करने लायक भी नहीं रहते।
बिल्कुल सही बात।
समस्या हो जाती है।
रेणु, आप कैसे बीबीसी में आ गई?
शायद डेस्टिनी नहीं थी बीबीसी में आने की। मैं अंग्रेजी पत्रकार थी और अंग्रेजी अखबारों में काम कर रही थी, पर बीबीसी के एक मधुकर उपाध्याय थे जो उस वक्त बीबीसी छोड़ के यूएनआई आए थे, हिंदी सर्विस की नौकरी निकली, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं अप्लाई कर देती हो, तुम मध्य प्रदेश की हो, हिंदी स्पीकिंग राज्य की हो, इसमें हिंदी में ऐसा कौन सा है। हमने अप्लाई किया, फादर कामिल बुल्के खरीद ली कि भाई जहाँ डिक्शनरी की जरूरत पड़े टेस्ट में।
बाबा बुल्के की डिक्शनरी बड़ी फेमस थी।
बाबा बुल्के ने हम सब की नैया शुरू में पार कराई। तो लंदन गए, लंदन जाके हिंदी सीखी, ब्रॉडकास्टिंग सीखी और पत्रकारिता भी सीखी एक बड़े आयाम में। मैंने जब ज्वाइन की थी तो 5-6 साल मेरा एक्सपीरियंस था और 15 साल मैंने बीबीसी में काटे, तो मैं तो अपनी जवानी बीबीसी के नाम कर दी।
तो इसलिए
देखिए आप कहते तो जहन पर। तो बीबीसी स्पेशल जगह रखती है दिल में।
विष्णु, आपने इतना लंबा सफर तय किया, तो शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप ब्रॉडकास्टर बन गए?
1991 में एक विज्ञापन आया था छोटा सा, बीबीसी में लंदन में प्रोड्यूसर्स की जरूरत है। तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, झोंक में हमने भर दिया, भरते रहते थे, कई बार कॉल आ गया। पूरी जो परीक्षण की प्रक्रिया थी वो बड़ी लंबी थी, एकदम सिविल सर्विसेज जैसी। पहले रिटन टेस्ट हुआ, फिर वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया गया, उसके बाद असली इंटरव्यू हुआ जिसमें डेविड पेज और विलियम क्रॉली, उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके बाद हम सेलेक्ट हो गए और 1992 में हम बीबीसी लंदन पहुँचे। वहाँ जो देखा वो बिल्कुल ही मेरे लिए एक नया अनुभव था। बीबीसी की ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग है पत्रकारिता के लिए, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो डिजिटल हो, रेडियो हो, तो इसलिए वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला।
रेहान साहब, आप तो ऑल इंडिया रेडियो छोड़ के आए थे, आप वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, एक सरकारी पक्की नौकरी, और उसके बाद आप बीबीसी में आ गए। ब्रॉडकास्टर तो थे ही आप, लोग जनता तो सुन ही रही थी।
बहुत अलग किस्म का अनुभव था। बीबीसी की जो खास बात ये थी, जो हम लोगों को जोर शोर से बतानी चाहिए कि कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, जैसे कि अगर किसी को तैराकी सिखानी है तो उसको आप बिल्कुल नदी में धक्का दे दीजिए, वो अपने आप तैरना सीख लेता है। उसी तरह हमारे साथ हुआ। हम शायद 1996 फरवरी, 8 या 9 फरवरी थी, और पहला दिन था बीबीसी में ज्वाइन किए हुए, संजीव श्रीवास्तव होते थे, मधुकर उपाध्याय होते थे, कुर्बान अली हमारे साथी होते थे। पहला ही दिन और ये तीनों करीब 8 बजे और तीनों ने हमारे ऊपर छोड़ के कहा कि सिर्फ 2 घंटे की बात है,
आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों
2 घंटे निपटाइए और जाइए। अब हमें पता नहीं था कि, हमने कहा ठीक है 2 घंटे काटने हैं, बस न्यूज़ पे नज़र रखनी है, अगर कुछ होता है तो लंदन को खबर करते हैं। साहब उसी वक्त फ़ोन आया, फ़ोन पे दूसरी तरफ मैं सुनता क्या हूँ, मैं खुशवंत सिंह बोल रहा हूँ, आपके यहाँ से दिन में फ़ोन आया था, मैं उस वक्त तो बात नहीं कर पाया था, इस वक्त मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अब खुशवंत सिंह जैसा नाम और हम बिल्कुल नौसिखिए, धुर नौसिखिए, पहला दिन बीबीसी में, ये भी नहीं पता कि क्या बैकग्राउंड है, क्या वो है, एकदम से दिमाग लगाया कि खुशवंत सिंह की मेमोयर्स छपने वाले हैं, उस पर कुछ कंट्रोवर्सी मची है, मेनका गांधी ने उन पर केस कर दिया। खैर अब हमें लाइन ट्रांसफर ना करनी आए स्टूडियो में, कैसे लाइन ट्रांसफर,
मुझे तो आखिर तक नहीं।
तो साहब दौड़ के किसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, उससे कहा कि भाई लाइन कैसे ट्रांसफर होती। पहला दिन लाइन ट्रांसफर हुई और किसी तरह से हांफते कांपते खुशवंत सिंह जैसे आदमी का इंटरव्यू पहले दिन, और फिर इसके बाद लंदन जाना हुआ और फिर धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि रवा होते गए।
बहुत अनुभव हैं, 2001 में मुझे याद है कि मैं आप ही से मिला था और 2001 का वो दिन मुझे आज भी याद है, 14 फरवरी 2001 का वो दिन था और उस दिन आपने मुझसे कहा कि भाई एक वैलेंटाइंस डे का एक पैकेज बनाना है, और मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था, तो मेरे लिए एक बड़ा मौका था कि भाई ऐसा क्या किया जाए वैलेंटाइंस डे पर एक स्पेशल पैकेज, और वो पहली बार एक हमने पैकेज बनाया, इतने पैकेज बनवा दिए रेहान साहब आपने।
पैकेज वो चीज होती है जिसमें थोड़ा म्यूजिक लगाते हो, दूसरे लोगों की एक्चुअलिटी, साउंड बाइट्स होती है, सबको मालूम ही नहीं ना पैकेज क्या है।
तो ये तो बात हुई कि भाई आप कहाँ थे और कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई, तो लंदन में बुश हाउस की क्या यादें हैं संजीव जी, इस्माइली बता रही है कुछ।
देखो हम तो 94 में गया था, मैं मार्च 94 में लंदन, और मेरा 3 साल के लिए वहाँ पे गए थे हम। जैसे बात विष्णु ने कही, सब ने कही कि जो बीबीसी की ट्रेनिंग थी ना जर्नलिज्म की, उस मेरे को जो ओरिजिनल सबसे ज्यादा याद है वो उस ट्रेनिंग के बारे में याद है कि इतनी मेटिकुलस परफेक्शन वाली ट्रेनिंग की। हम 10 साल पत्रकारिता करके गए थे, 5 साल टाइम्स ऑफ इंडिया, 5 साल एक्सप्रेस, उसके बावजूद भी ऐसा लगा कि जैसे नए सिरे से शुरुआत हो रही है, एक ऑब्जेक्टिविटी, एक कंसाइज होने की, सीमित शब्दों में। जो पहले ट्रेनर की लाइन, उन्होंने मेरे को डिस्पैच यानी एक आर्टिकल लिखने को कहा, रेडियो आर्टिकल, मैंने कहा बहुत लंबा चौड़ा विषय है, कश्मीर विवाद, भारत पाकिस्तान, मैंने कहा कितना लंबा लिख सकते हैं, कितने शब्दों का, उन्होंने कहा 1 मिनट का, मैंने कहा 1 मिनट में कैसे समाएगी ये सारी बात। तो उन्होंने कहा जो कहानी 1 मिनट में नहीं कही जा सकती वो आप जीवन भर में नहीं सुना सकते। सो दैट वाज लेसन नंबर 1।
बिल्कुल,
जो बीबीसी में मैंने सीखा कि अगर आपको कहानी मालूम है तो आप 1.25 मिनट में दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी कह सकते हैं, नहीं मालूम अगर आपको तो आप नहीं कह पाएंगे। जो सबसे बड़ा वाक्य है उसका कि मेरे लंबा कॉन्ट्रैक्ट में मैं, लेकिन 8 महीने में मुझे हुआ कि भाई मुझे तो वापस भारत जाना है, रिपोर्टिंग का कीड़ा
था,
तो रिचर्ड हैरिस के पीछे पड़ पड़ के उसने कहा यहाँ जो आता है कॉन्ट्रैक्ट लंबा करवाने की कोशिश में रहता है, तुम पहले क्यों जाना चाहते हो। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है लंदन, काम में मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ 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 करके आ गए आप सबके बीच में वापस।
जब विष्णु आप बुश हाउस पहुंचे और तमाम बड़े बड़े नाम, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, अचला शर्मा, परवेज आलम, कुर्बान अली, लंबी फेरिस्त के साथ आपने बैठा दिया गया कि हाँ भाई अब इनके साथ काम करना है, कैसे काम किया?
मुश्किल नहीं हुई। जो शुरू में काम मिलता था वो ये था कि सब रिपोर्ट पढ़ी है उसको देख करके हिंदी में उसको अनुवाद कीजिए, उसके बाद माइक पर पढ़िए लाइव या रिकॉर्डेड जैसा भी होता था, वो मुश्किल नहीं था। और हम उसके लिए गए भी नहीं थे, हम गए थे वहाँ पर एक इंडियन पर्सपेक्टिव देने के लिए चीज़ों को, जो कि उस समय शायद वहाँ पर लैक करती थी, खबरें
बदल रहा
जी। और उसके बाद लाइव प्रोग्रामिंग, आप इंटरव्यू कीजिए, लाइव कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, हर प्रोग्राम में हम लोग कुछ ना कुछ लाइव एलिमेंट और कोई ना कोई ऐसा बड़ा इंटरव्यू करने की कोशिश करते थे जिससे खबर बने।
रेणु आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए, और पहले के वो वाकये कि भाई आप फोन उठाएं और जिसका आप इंटरव्यू चाहते हैं वो मौजूद हो।
बीबीसी का इतना बड़ा नाम था उस वक्त कि आपको पता चला लाल किले पे हमला हो रहा है और आतंकवादी बीबीसी के ऑफिस में फोन कर रहा है और कह रहा है कि हमारे जंगजू लड़ रहे हैं, और हम दिल्ली पुलिस को फोन करते हैं रात को कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है क्या लाल किले में, उनको भी नहीं पता, और फिर पता चलता है कि रेड फोर्ट पे अटैक हुआ है। आप स्टूडियो में जाते हैं, आपके पास फोन आता है कि हिजबुल मुजाहिदीन वाला कह रहा है कि हम जो पीस टॉक्स हमने गवर्नमेंट से शुरू की हम उसको खत्म कर रहे हैं। माजिददार का फोन आता है, हम फोन पिक करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, आधी उर्दू मुझे समझ भी नहीं आती वो क्या बोल रहा है। कुर्बान साहब साइड में खड़े हो, कहते हैं आप बस अपने सवाल पूछते जाइए, डिसाइफर हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर होने वाली है कि टॉक से वो वापस जा रहे हैं, पर इतनी गाड़ी उसकी उर्दू की मुझे समझ नहीं आ रही थी वो बोल क्या रहे हैं, हम अपना सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं ये। तो आप ब्लाइंड में खेल रहे हैं और आपको इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज मिल रहे हैं। हम पाकिस्तान गए सार्क समिट कवर करने, लेकिन साथ में जो कीड़ा होता है रिपोर्टिंग का, आप करने कुछ चाहते हैं और 10 चीज़ें और करना चाहते हैं, तो सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन चीफ का इंटरव्यू करने पहुंच गए। सब कुछ बड़ा अच्छा, पर जब इंटरव्यू करने बैठे तो सलाहुद्दीन सामने बैठे हैं और उनके आसपास चार कलाशनिकोव लेके आदमी खड़े हैं और बोल रहे बहन जी पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं।
आप कौन पूछे?
आप समझ लीजिए कि आप क्या क्या पूछ सकते थे उस हालात में, लेकिन आप हिम्मत करते हैं, आप अकेले पाकिस्तान गए, लाइफ में पहली बार पाकिस्तान गए हैं, डर से आपकी जान खिसक रही है और चार कलाशनिकोव देख के आपकी जान खिसक रही है, लेकिन आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में माइक है जो आपको बहुत शक्ति देता है और बीबीसी का ब्रांड था।
पहले के जमाने में नेताओं को पकड़ना कितना आसान होता था और आज कितना मुश्किल है, आज नेता पकड़ में आ गई।
देखिए हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, बीबीसी का नाम इतना बड़ा था कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था बीबीसी को इग्नोर करना। अकेले आकाशवाणी थी रेडियो में। 1996 वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और हमसे नरेश कौशिक शायद उस दिन प्रोड्यूस कर रहे थे, हम इसे कह लीजिए कि ट्रेनी जर्नलिस्ट या बिल्कुल आए 3 या 4 दिन हुए थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करते,
मतलब
आज के युग में ये बात अगर आप किसी से कहेंगे
कल्पना से परे है
तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने फोन मिलाया और थोड़ी देर में अटल बिहारी वाजपेयी लाइन पर थे और उस जमाने में टेप्स हुआ करते थे, वो
स्पूल होता था,
स्पूल होता था और स्पूल पे
ब्लेड से काटते
और उसको ब्लेड से काटते थे और उसको एडिट करने के लिए सफेद रंग की चिप्पी लगाई जाती थी। प्रोग्राम से करीब 15 मिनट पहले वो इंटरव्यू हुआ और हमें ये जिम्मेदारी भी दी गई कि साहब उसको एडिट करके
पॉजेस काटिए,
पॉजेस काटिए।
वाजपेयी जी का
आपको यकीन नहीं होगा कि जब वो काला टेप कटा तो वो बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था, उसमें इतनी चिप्पियां लगी हुई थी पॉजेस को भरने के लिए कि वो बिल्कुल, वो जब हम स्टूडियो मैनेजर के पास हाँपते हुए लेके गए वो टेप, तो वो कहता है कि ये कोई दूसरा टेप तो नहीं उठा है। और वो एयर पे गया वो इंटरव्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अब शायद कल्पना करना बहुत मुश्किल है उसके बारे में।
संजीव, कोई ऐसा वाकया हमारे श्रोताओं को बताइए कि जब लगा हो कि हाँ भाई कुछ हो गया और कहीं फंस गए।
95 में एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुए थे, पार्लियामेंट चुनाव जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ गए तो माहौल खतरनाक सा था, इमेजिन नहीं कर सकते। एक ही होटल चलता था, अदूस नाम था शायद उसका, और वहाँ पे कोई बीएसएफ इंटेलिजेंस, कोई आर्मी इंटेलिजेंस, कोई हिजबुल, कोई जेकेएलएफ वेटर, सारे उनके लिए काम करते थे। हाँ, सब एक ही जगह। तो वहाँ गए तो नारेबाजी हो रही यासीन मलिक की कॉलोनी में, तो सब क्या हो रहा है तो कश्मीरी में समझ नहीं आया। तो लेकिन जो स्थानीय पत्रकार साथ में था उसने कहा कि ये नारे लग रहे हैं कि संजीव श्रीवास्तव आए हैं बीबीसी के, अब सही खबर जाएगी। संजीव श्रीवास्तव ही रेलेवेंट था, संजीव श्रीवास्तव की जगह एक्स वाई जी जो भी होता उसके लगते, लेकिन बीबीसी की विश्वसनीयता इतनी ज़बरदस्त थी। एक दूसरा वाक्य बताऊं मैं आपको, बॉम्बे में हम 95-96 की बात, उन दिनों STD PCO से फ़ोन कनेक्ट होता था, डायरेक्ट आप फ़ोन नहीं मिला सकते थे, तो और उससे पहले वहाँ पे डिपॉजिट रखना होता था कि पैसे जमा कराइए फिर वो कनेक्ट होएगा। 2 दिन नटराज होटल में रुके थे जो अब ललित है शायद, तो PCO वाले ने कहा जब मैंने फ़ोन किया उसको कि भाई मैं पैसे जमा कराने आऊँगा, उसने कहा नहीं आप रहने दीजिए, पहचान गया आपको, आवाज़ से पहचान गया वो मतलब गाढ़ा श्रोता जबरदस्त। तो जब मैं उसके पास बिल सेटल करने गया आने से पहले, तो वो मालूम पड़ा 2 भाई थे उस STD PCO को चलाने वाले, दोनों बीबीसी के प्रचंड श्रोता, तीनों कार्यक्रम, चारों कार्यक्रम सुनने वाले, और वो दोनों ब्लाइंड। तो दोनों का जो वर्ल्ड व्यू था पूरी दुनिया का, मुझे उस दिन लगा कि बीबीसी कितना अच्छा है, कितने लोगों की किस तरह से सेवा कर रही है, बिकॉज दैट वॉज द बिगेस्ट एज अ बीबीसी पर्सन, जो मुझे उससे बड़ा ट्रिब्यूट कोई नहीं मिला। कि मैं 3 दिन तक उनसे बात करता रहा और बाद में मालूम पड़ा है कि वो दोनों देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुनते थे। तो कई कहानियां और जो इंटरव्यूज की बात चली, मैं बताऊं किस किस के इंटरव्यू, सभी के इंटरव्यूज मिलते थे, जैसे रेहान का कोई इग्नोर नहीं कर सकता था, लेकिन सबसे मजेदार इंटरव्यू लालू प्रसाद यादव थे। वो जैसे ही उनको मालूम पड़ता था बीबीसी से फोन आया, बिहार में इतनी लिसनरशिप थी, वो पहले तय कर लेते थे मुझे ये तीन बातें कहनी है, आप कोई भी तीन सवाल पूछिए लालू जी से, उनके जवाब भी पहले से तय होते थे, कोई कनेक्शन नहीं, सब वो दौर अलग था, आज दौर अलग है।
इंटरव्यू से याद आया, जब 1999 में कंधार हाईजैक हुआ था IC-814, उस दिन आजकल और घटना चक्र दोनों मुझे करना था, आजकल में जैसे ही समाचार खत्म हुए फ्लैश आया कि खबर है कि कोई इंडियन लाइंस का जहाज हाईजैक हो गया है। मधुकर यहाँ दिल्ली में थे और मैं उस दिन प्रेजेंट कर रहा था, तो ये समझिए आप कि उस पूरे 40 मिनट में हमने और कुछ नहीं लिया, वो दिन मेरे लिए बिल्कुल अविस्मरणीय है, क्योंकि हमने लगातार उस कहानी को ऐसे दिखाया जैसे वो हो रहा था। ब्रॉडकास्टिंग में इससे बेहतर और क्या हो सकता
बिल्कुल।
है। उस समय भी बीबीसी इतना वजन रखती थी कि मैं रोज रात में जचन सिंह जी जो उस समय विदेश मंत्री थे उनको फोन करता था, एक दिन भी ऐसा नहीं है उन 7-8 दिनों में जब मैंने फोन किया हो और उन्होंने फोन ना उठाया हो।
बताइए, भारत का विदेश मंत्री खुद फोन उठा के बात कर
रहे हैं, भाई सोच ही नहीं सकते।
थोड़ा सा ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, बहुत मजेदार चीज है जो श्रोता हमें सुन रहा है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है, कुछ गड़बड़ घोटाला कुछ ऐसा याद आता हो।
गड़बड़ घोटाला मेरे साथ एक बार हुआ था, घटना चक्र जो हमारा उस दिन का आखिरी प्रसारण होता था उसको करना था, उस दिन हम समाचार पढ़ रहे थे और किसी वजह से घड़ी की तरफ हमारी नज़र नहीं गई और उस दिन स्टूडियो बदल गया था, इंग्लिश न्यूज़ जहाँ से नशर होती थी वहाँ से पढ़ना था, तो हम अपना चहलकदमी करते हुए अपने स्टूडियो की तरफ पहुँच गए, वहाँ बंद था, तब याद आया कि अरे यहाँ तो
स्टूडियो बदल गया,
नहीं स्टूडियो बदल गया, दूसरा स्टूडियो दूसरे ब्लॉक में था बुश हाउस के, और लिफ्ट आ नहीं रही थी, हम भागते हुए सीढ़ियों से गए, हाँपते कांपते किसी तरीके से पहुँचे और उसी हाँपती कांपती आवाज़ में हमने उस दिन न्यूज़ पढ़ी और हम बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन सच्चाई है कि ये घटना हुई थी और मैं बहुत शर्मसार हुआ था।
रेहान साहब,
इसी तरह की एक दिलचस्प घटना हुई हमारे और रेनू अगाल सामने बैठी हुई है और हम दोनों नए नए बुश हाउस पहुँचे थे और शायद छठा या सातवां दिन था, हम दोनों से कहा गया कि आप विश्व भारती प्रोड्यूस करिए, जो एक सीनियर हमारे साथी थे उन्होंने कहा कि मैं आपका रनिंग ऑर्डर बना देता हूँ, ये चीज़ें आपको लेनी है और इनको शामिल करना, और साहब हम दोनों ने प्रोग्राम करना शुरू किया और करीब 27 मिनट में वो प्रोग्राम खत्म करके उसमें न्यूज़ व्यूज सब शामिल हो गए।
प्रोग्राम तो 30 मिनट का था ना,
30 मिनट का था, 27वें मिनट पे रनिंग ऑर्डर में कुछ बचा ही नहीं,
हमने कहा कि अब
जब विदा लेने के लिए हमने दूसरे शीशे की तरफ वेव किया तो वहां पर क्रिस मेलवर्ड हुआ करते थे स्टूडियो मैनेजर, उन्होंने कहा कि भाई साहब अभी तो 2 मिनट बाकी हैं, अभी आप विदा ले ही नहीं सकते। हम लोग दोबारा एयर में आए और ये समझ लीजिए कि नौसिखिए, दोनों नौसिखिए, अब समझ में 2 मिनट एयर पे भरना, खैर किसी तरह से मानी, इन्होंने दोबारा न्यूज़ पढ़ी।
क्या रेनू दोबारा न्यूज़ पढ़ी?
दोबारा न्यूज़ पढ़ी और ये तो वो कि प्रोग्राम छोटा हो गया, एक घटना चक्र जो कार्यक्रम था उसमें एक बीच में ब्रेक आता था, मतलब आप आधे घंटे के बीच में एक ब्रेक आता था जो ऑटोमेटिक आप कट ऑफ हो जाते थे, अब वो घड़ी पढ़ना ही ना आए कई दिनों तक, नया नया ज्वाइन किया था, किस्मत ऐसी थी कि 6 महीने उसी ड्यूटी पे लगे, रोज वही कार्यक्रम करना है, और उसके उस घड़ी का ऐसा डर हुआ कि रात को सपने में वो घड़ी आने लगी
भाई,
सपना भी कट जाता था कि वहां तक हमें पढ़ना है।
एक उदाहरण सुनिए कार्यक्रम बड़ा होने की बात, हमारे साथी होते थे अब्दाल महचूर, उस जमाने में परवेज आलम हमारे बगल में बैठे हुए थे और कार्यक्रम समाप्त होने में शायद 10 या 11 सेकेंड बचे हुए थे और अब्दाल महचूर रुकने का नाम नहीं ले रहे, परवेज आलम अपनी जगह से उठे, उन्होंने अब्दाल महचूर के मुंह पे अपना हाथ लगाया और कहा कि इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त होते हैं, हमको अनुमति दीजिए। तो साहब ये लाइव ब्रॉडकास्ट के लटके झटके।
मैं थोड़े से बीबीसी के अपने साथियों को याद करना चाहता हूँ इस मौके पे, जो ब्रिलियंट ब्रॉडकास्टर्स है ना, परवेज बहुत क्या ब्रॉडकास्ट,
अभी हमारे श्रोताओं ने उनको सुना पिछले कार्यक्रम में,
फिर यहाँ जो मेरे साथ सीमा ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, सीमा चिश्ती ने, इतनी खूबसूरत उसकी आवाज, मधुकर उपाध्याय गोल्डन वॉइस, और जैसे मैं बता रहा था कि जब वो कागज पे लिखता था तो जैसे मोती सजते थे, जो उसकी हैंडराइटिंग थी मधुकर की, और आधे पन्ने में डिस्पैच आ जाता था, रूपा जो अभी देख रही हैं, अगेन बिल्कुल जिसे इतनी मीठी आवाज की मलिका धनी, मतलब सुनने वाले उसकी आवाज के दीवाने हो जाया करते थे रूपा जाके, ये जलवा था एक जमाने में। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आए और सम ब्रिलियंट पीपल और सबसे अच्छे श्रोता, जो बात बात पे लड़ने पे भी उतारू, फीडबैक देने पे उतारू, हाँ कि ये क्यों बोले, ये गलत थी आपकी बात, ये सही नहीं थी।
और उतने ही आपको चाहने वाले भी, हाँ, हम बिहार एक बार गए, किसी से सवाल पूछ रहे थे, माइक नहीं था हाथ में, कोई ब्रांडिंग नहीं थी, हम बीबीसी के लोग हैं, आवाज से पहचान गए। कोई आपको सड़क चलते रोक के पूछ ले कि आप वो तो नहीं है, तो वो मतलब
बड़ी बात है,
बड़ी बात।
ब्रॉडकास्टिंग की बात हुई, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि अब तक एक प्रोग्राम होता था दोपहर का, जो प्रोग्राम था 10 मिनट का प्रोग्राम था, और वो बुलेटिन मैं कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि बुलेटिन का प्रसारण शुरू हुआ, 10 मिनट की बुलेटिन थी, टेप चल रहा था, और सडनली स्टूडियो में लाइट चली गई। अब पढ़ू क्या,
और वो लाइव कार्यक्रम,
लाइव कार्यक्रम घुप अंधेरा। तो अचानक जो है वो सीमा दौड़ के आई, पता नहीं कहाँ से उनके हाथ में टॉर्च आई, तो वो टॉर्च वो दिखा रही हैं और मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ।
तो इसी कार्यक्रम में अब तक की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, पार्लियामेंट अटैक का टाइम भी वही था,
वही टाइम था,
और हम लोगों का ऑफिस था आईफैक्स बिल्डिंग में। तो पहले हमने सोचा कि पटाखे चल रहे हैं कहीं, फिर छत पे गए, नहीं ये तो कुछ सीरियस मामला है, और फिर दोस्तों से फोन करके पूछा, तो अंदर एक यूएनआई के कॉरेस्पॉन्डेंट थे जो अंदर बंद थे, उनसे हमने उस प्रोग्राम में लाइव किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो
बहुत चीजें हैं, किससे खत्म ही नहीं हो सकते। अमिताभ बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम बीबीसी की तरफ से देने मैं गया,
कमाल,
2000 में है। तब उनके सितारे बिल्कुल गर्दिश में थे, उनसे नखरे गोविंदा ने किए जो 10th नंबर पे था उस ओपिनियन पोल में। गोविंदा जी हाथ नहीं आ रहे बड़ी आसानी से।
बीबीसी की जो पहचान है वो इसके श्रोताओं की वजह से है। आज भी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों का जमाना, मतलब लोग कहते हैं हाथ से कैसे लिखते होंगे, लेकिन अभी भी दफ्तर में चिट्ठियां पड़ी रहती हैं। बहुत बार जब हम बाहर जाते हैं, तब रेहान साहब आपका क्या अनुभव है जब श्रोताओं के बीच पहुंचे?
जैसे कि आप स्टार हों, इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू शुरू में बड़ा एम्बेरसमेंट लगा कि लोग आपके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कागज बढ़ा के, और पूरा एक
और रेहान साहब कितनी भ्रांतियां भी बीबीसी के नाम से फैलाई जाती हैं कि ये बीबीसी पे आया था।
हाँ। अरे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, एक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्टर स्टेट हुआ करते थे, आरजेडी के बहुत बड़े नेता थे तस्लीमुद्दीन, और उनकी चुनाव सभा हम कवर कर रहे थे, और ऐसे ही पीछे बैठ के बस नोट्स ले रहे थे, और एकदम से खबर फैली कि बीबीसी के लोग आए हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मंच पर से अनाउंस हुआ, अब बीबीसी के संवाददाता रेहान फजल आपको संबोधित करे। साहब पूछिए मत किस तरह से वहां से पिन छुड़ाया और लोग पीछे पड़ गए।
बाबूलाल मरांडी की रैली हो रही थी और बीबीसी की मार्केटिंग का एक ड्राइव थी, हम लोग जगह जगह जाके रोड शो कर रहे थे,
कारवां,
तो जो कारवां हमारा पहुंचा तो सब मरांडी की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो मरांडी को छोड़ के सब बीबीसी के तंबू पे आ गए।
मुझे याद है कि कुंभ कवर करने के लिए हम गए थे और सवेरे हमने मॉर्निंग का ट्रांसमिशन किया आज के दिन में, उसमें एक लाइव प्रोग्राम हमने खत्म किया आज के दिन, कि थोड़ी देर बाद मालूम चला कि वहां पर करीब 50 से 100 लोग खोजते हुए चले आए कि हमें इनसे मिलना है, और हमें ये बात बाद में मालूम चली कि जब हम शाम को लौट के आए तो मालूम चला कि वो शाम तक आपका इंतजार करते रहे।
बिल्कुल जलवा उस समय पे बिल्कुल अलग था,
उस समय संचार माध्यम कम थे, टेलीविजन उस समय अड़ाई ले रहा था, न्यूज टेलीविजन, बीबीसी की उस समय क्या धमक थी।
कहते ना कि अगर बात करने के लिए बैठेंगे तो यहीं पर बैठे बैठे कई घंटे हम निकाल देंगे, बातें हमारी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हमें विदा लेनी होगी। तो संजीव श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, और बीबीसी को नए अवतार में पोस्ट शॉर्टवेव फेज की भी पूरी शुभकामनाएं।
मैं भी बीबीसी को शुभकामनाएं दूंगा, खुशी है कि डिजिटल माध्यम से ही सही, लेकिन बीबीसी हमारे साथ रहेगा।
मेरी भी शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि नए अवतार में ऑनलाइन रेडियो के तौर पे बीबीसी लोगों तक
डिजिटल
रेडियो के तौर पे लोगों से जुड़ा रहे।
डिजिटल माध्यम से जो अभी तक का बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है विवेचना, वो जारी रहेगा, दुनिया जहान भी जारी रहेगा,
हमारी शुभकामनाएं।
बिल्कुल।
तो मैं मोहनलाल शर्मा अपने समस्त सहयोगियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ।
नमस्कार।
आपको एक बार फिर बता दें कि बीबीसी हिंदी सेवा का शॉर्टवेव माध्यम से होने वाला प्रसारण यानी रेडियो कार्यक्रम 31 जनवरी को बंद होने वाला है, लेकिन डिजिटल माध्यम से आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। दिनभर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, और उन्होंने ही हमें फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।